वंश रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की लिखी एक अत्यंत प्रसिद्ध लघु कथा है, 1886 में पब्लिश हुई, हाउ मच लैंड डस द मैन नीड। उस कहानी में एक किसान है, उस किसान का नाम है पाहोम, रशिया में है, खेती है, परिवार है, पर जीवन में एक अतृप्ति है, असंतोष। और एक दिन उसका एक मित्र, एक सन्यासी, उसके घर में आके उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, साइबेरिया में, और मैंने सुना है वहां पर जमीन बहुत सस्ती है, सस्ती तो क्या, मुफ्त में मिलती है। वो पाहोम रात भर सो नहीं पाता, उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ बेच बाज कर अगले दिन सुबह वो साइबेरिया के लिए निकलता है और वहां पहुंचता है और वहां के लोगों से मिलता है और वहां के लोगों से पूछता है, यहां जमीन का क्या भाव है। वो लोग कहते हैं, जमीन का भाव, यहां जमीन मुफ्त में मिलती है, शर्त केवल इतनी है कि तुम सुबह से दौड़ना जहां चालू करोगे, जितना तुम जमीन पर चल सको या दौड़ सको वो सारी जमीन तुम्हारी, परंतु शाम तक वापस लौट आना है। जिस स्थान से निकलोगे उसी स्थान तक शर्त अनुसार सूर्यास्त से पहले लौट आना है। वो पाहोम रात भर नहीं सो पाता है, सोचता है कितना चलूं और कितना नहीं, कितनी जमीन ले लूं और कितनी नहीं, बेचैन रहता है। सुबह होती है, वो निर्धारित स्थान पर पहुंचता है और सारा गांव वहां इकट्ठा हुआ है और वहां से वो चलना चालू करता है। पहले चलता है और फिर उसे लगता है कि अगर चलूंगा तो कम जमीन मिलेगी, कितना ना अच्छा हो कि मैं दौड़ूं, और वो दौड़ने लगता है क्योंकि जितना दौड़ेगा उतनी जमीन अधिक मिलेगी। दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, बीच में उसे भूख लगती है, पर सोचता है अगर खाने के लिए रुका, बैग लेकर आया है, थैली है जिसमें भोजन है, पर अगर रुका तो जमीन कम हो जाएगी, इसलिए अपने भोजन को फेंक देता है, कहता है जीवन भर फिर खाना ही है, और दौड़ता है और हाँफता है और दौड़ता है और हाँफता है। दौड़ते दौड़ते उसे प्यास लगती है, सोचता है अगर पानी पीने के लिए रुका तो जमीन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और दौड़ता है और हाँफता है और दौड़ता है और हाँफता है। और दोपहर हो जाती है और फिर मन कहता है अभी लौट चलना चाहिए क्योंकि शाम तक पहुंचना है, जहां से निकले वहीं तक, परंतु देखता है सामने की जो जमीन है वो बड़ी हरी हरी दिखाई दे रही है, और दौड़ता है और हाँफता है और दौड़ता है और हाँफता है। शायद 2 बज जाते हैं और सोचता है कि अब तो लौटना चाहिए, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही उर्वर, फर्टाइल नजर आ रही है, थोड़ा सी जमीन और ले लेता हूं, और दौड़ता है और हाँफता है, दौड़ता है और हाँफता है। और फिर एक समय आता है, अब उसको लगता है कि मुझे वापस लौटना चाहिए, अगर नहीं लौटा तो सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचूंगा, और फिर लौटता है और तेजी से भागता है, परंतु समय बहुत कम है, जितना हो सके जी जान लगा देता है और भागता है और भागता है और हाँफता है और भागता है और हाँफता है। दूर दिखाई देते हैं गांव वाले लोग खड़े हैं और उसे पुकार रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उधर देखता है, उधर सूर्यास्त होने वाला है, और दौड़ता है और दौड़ता है और दौड़ता है और तेजी से दौड़ता है। गांव वाले पुकारते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस तुम पहुंच नहीं वाले हो। और दौड़ता है और हाफता है, और ये लकीर है जहां उसे पहुंचना है, और उससे थोड़े ही दूरी पर वो पहुंचता है और धड़ाम से गिरता है और सूर्यास्त हो जाता है और मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं, आज एक पागल फिर मर गया, और उसे दफनाया जाता है छोटी सी जगह में। कथा का शीर्षक है, हाउ मच लैंड डज द मैन नीड, एक मनुष्य को कितनी जमीन की आवश्यकता है। और कहानी यहीं पूरी हुई। इस कहानी पर फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। तो जो हमने सुना उसे क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा? लोभ, लालच, एक और इच्छा, और लोभ और इच्छा तो एक ही है, और लोभ इच्छा ये सब बुरा है, ज्यादा ना हो ये सब ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ भी लेके नहीं गया, और समय और जीवन और कुछ और दिखाई दे रहा है इसमें। लक्ष्य जो था टाइम मैनेजमेंट में गलती हो गई, टाइम मैनेजमेंट में मिस्टेक, और भी कुछ, और भी कुछ। हाँ, माया के जाल में फंस गया, वो पहले पॉइंट में आ गया, और पानी पीने और खाने का क्या त्याग कर दिया, तो करना चाहिए। तो भी शरीर काम करेगा, बॉडी मैनेजमेंट। तो मिस्टेक कहां हो गई, बॉडी मैनेजमेंट में मिस्टेक कहां हो गई, टाइम मैनेजमेंट में बॉडी मिस्टेक कहां हो गई, एम मैनेजमेंट में मिस्टेक हो गई। जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ रखा परंतु उसकी कोई प्लानिंग नहीं की। जीवन लक्ष्य था परंतु पहुंचना कैसे, वो गलती हो गई। और भी कुछ, और भी कुछ, और भी कुछ, ज्यादा जो है उसमें संतुष्टता, समाधान। संतुष्टम सततम योगी, हे अर्जुन, योगी वो है जो संतुष्ट रहे। संतुष्टता अर्थात ये नहीं कि हम हार मान ले या प्रगतिशील ना हो, जो है उसमें खुश है। Over ambitious, a religious mind is a non-ambitious mind. Shakespeare का नाटक है Macbeth, ambitious हो जाता है। Ambition रखना खराब बात नहीं है, परंतु वो अगर भटका है तो आप सब यहाँ आए और यहां पर ज्ञान की बातें सुनी और सबने बहुत अच्छा अच्छा सुनाया और सुना भी अच्छा लगा भी अच्छा। परंतु अब आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, ये एक प्रश्न है, उसको प्रोसेस करना है, उस ज्ञान को भीतर जाने देना है, उस ज्ञान को भीतर समाना है। नहीं तो केवल ज्ञान रूखा सूखा, उसके साथ अनुभव को जोड़ना है, उसके साथ इमोशंस को जोड़ना है, रुकना है, टू पॉज, और सोचना है हम कहाँ दौड़ रहे, कहीं हमारी दौड़ भी जीवन की ऐसी ही तो नहीं जो जैसे उस पाहोम की थी। वो दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया। बड़े शहरों में जाओ और खड़े हो जाओ और देखो वहां पर सब क्या कर रहे, दौड़ रहे, भाग रहे। किसको पूछो दादर स्टेशन पर खड़े रहकर कहाँ जा रहे हो, क्या कहता है, बस दौड़ना है, पहुंचना है कहीं, पर कहीं पहुंच भी रहे या बस दौड़ ही रहे, और कब से दौड़ना चालू किया और भाग ही रहे और भाग ही रहे और भाग ही रहे, पता ही नहीं उत्तर मिलता है क्यों दौड़ रहे हो, तो क्योंकि दूसरे दौड़ रहे, हम भी दौड़ रहे। या जीवन एक ट्रेडमिल की तरह तो नहीं हो गया है, ट्रेडमिल मशीन पता है ना, जिसमें व्यक्ति भागता है पर पहुंचता कहीं नहीं है। लेविस कैरोल की लिखी हुई एक किताब है एलिस इन वंडरलैंड, छोटे बच्चों की किताब, एलिस इन वंडरलैंड, 7 साल की एलिस स्वर्गलोक में पहुंच जाती है, एक स्वप्न जगत में, वहां सब कुछ अजीबोगरीब है। एक खरगोश का पीछा करते करते एक बिल में जाती है और वहां से स्वप्नलोक में पहुंच जाती है छोटी सी एलिस, और सब अजीबोगरीब उसे दिख नजर आता है वहां पर, और सुबह से आई हुई है, दूसरा दिन हो गया, भूखी है प्यासी है, और अचानक उसे भोजन दिखाई देता है, थाल है भोजन के रखे हुए झाड़ के पास, और उसे भूख बहुत लगी है, वो चलने लगती है, उसे लगता है चल के नहीं होगा भागना पड़ेगा, वो भागने लगती है, दोपहर हो जाती है वो भागती ही रही है, परंतु वो डिस्टेंस उतना के उतना ही है। उस झाड़ के पास एक रानी खड़ी है और रानी से पूछती है कैसी दुनिया है तुम्हारी, मैं सुबह से भाग रही हूं कहीं नहीं पहुंच रही। रानी कहती है तुम्हारी स्पीड कम है, तुम तेज भागो। वो तेज भागने लगती है, शाम हो जाती है फिर भी डिस्टेंस सेम, व्हाट वर्ल्ड इज दिस ओ क्वीन। वो पूछती है रानी ये कैसी दुनिया है तुम्हारी, मैं तो कहीं पहुंच ही नहीं रही हूं। वो रानी कहती है ये दुनिया भी तुम्हारी उस दुनिया जैसी है जहां से तुम आई हो, यहां कभी भी कोई कहीं नहीं पहुंचता, केवल भागते रहता है, केवल भागते ही रहता है, भागते ही रहता है। उसे लगता है ये मिल जाए तो सुख मिलेगा और वो मिल जाए तो सुख मिलेगा, और सुख कभी मिलता ही नहीं। उसे लगता है घर बन जाए तो सुख मिलेगा, उसे लगता है शादी हो जाए तो सुख मिलेगा, उसे लगता है पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो सुख मिलेगा, परंतु कुछ भी नहीं मिलता और वो भागते ही रहता है। ये कैसी दौड़ है, ये कैसी रैट रेस है, ये कैसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि जिसमें हम भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे और कहां पहुंच रहे हैं पता नहीं। तो आप यहां आए, यहां आने का उद्देश्य एक ही, रुकना, टू स्टॉप, स्वयं को देखना, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कौन, मैं क्या, मुझे क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस विषय में सोचना, मुझे करना क्या है और मार्ग क्या है, मैं किस मार्ग से जाऊं। ये किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सेल्फ क्वेश्चनिंग। अभी तक जो यात्रा की उससे मुझे क्या मिला और अभी जहां जा रहा हूं वो मुझे कहां पहुंचाएगा। अगर यही दिशा रही तो सभी आंखें बंद करेंगे, स्थिर बैठेंगे, चिंतन, स्वयं से बातें करेंगे। जीवन की इस यात्रा में मैं कहां खड़ा हूं, किस स्टेशन पर अपने जीवन को देखेंगे। अपने लौकिक घर को देखेंगे, वर्तमान परिस्थितियों को देखेंगे, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन लोगों को देखेंगे। कहां से इस जीवन की यात्रा शुरू की, और चलते चलते दौड़ते दौड़ते मैं कहां आ गया हूं। वर्तमान जीवन में मैं अपने लिए कितना समय निकालता हूं। मेरी ये दौड़ मुझे कहां ले जा रही। अपने जीवन को एक मेंटल मूवी की तरह देखेंगे, एक स्क्रीन पर। मैं कहां हूं, मैं कौन क्यों हूं, कहां जा रहा। स्वचिंतन, आत्मचिंतन, स्व अवलोकन, स्वयं से बातें। ओम शांति। इस कार्य को रोज करना है। कौन सा काम? खुद से बातें करनी, स्वयं से पूछना है मुझे क्या करना है। मैं कहां भाग रहा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। धन, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज, सांसारिक सुख, सांसारिक सुविधाएं, या इससे परे भी कोई एक और जगत है। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, तब एक गीत सुना था और वो भी पूरा नहीं सुना, उसके कुछ ही शब्द सुने, पर वो कुछ शब्द इतने गहरे चले गए बाल मन में कि उसने आगे की दिशा बदल दी। वो एक मराठी गीत था, सर्वस्व त्यास अर्पीन। मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा, हे जीवन ना तरी व्यर्थ, मि सिद्ध मराया लाहो, बलसागर भारत हो। उसमें के कुछ ही शब्द थे, परंतु जैसे आत्म जागृति हुई, यह जीवन वैसे भी व्यर्थ है, मैं वो नहीं कर सकता जो संसार के लोग कर रहे हैं। जीवन का कोई एक महान लक्ष्य है, कोई श्रेष्ठ लक्ष्य है, वैभवी देश चढ़वीन, सर्वस्व त्यास अर्पीन। कुछ तो चाहिए था कि जिस पर सब कुछ अर्पित किया जाए, और आगे चलकर पता चला कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिस पर यह जीवन न्योछावर किया जाए। जब हम 16 साल के थे, 12th, 16 या 17, 12th की एग्जाम दी, छुट्टियां लग गई और जैसे सब बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, हम भी। और फिर हमारे लौकिक माँ बाप चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, और महाराष्ट्र में एक स्टेट एंट्रेंस होती है, एक नेशनल ऑल इंडिया होती है, और एक तीसरी एंट्रेंस होती थी सेवाग्राम। सेवाग्राम नाम की एक जगह है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, जिसकी अपनी एक एग्ज़ाम होती है। अगर वो पास कर दो तो वहाँ पर एडमिशन मिलती है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट भी था, जिसका नाम था गांधीयन थॉट्स। और हमारे पिताजी एक किताब लेकर आए, कुछ किताबें, उसमें से एक किताब थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, एम के गांधी। उस किताब को हमने पढ़ना चालू किया क्योंकि एग्जाम देनी थी और पास करना था। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन और चौथा दिन, और किताब पढ़ते पढ़ते हम मौन में चले गए। और हमारे घर में और एक दूसरी बहुत फटी पुरानी किताब पड़ी हुई थी, लव ऑफ गॉड नाम की, सेंट फ्रांसिस ऑफ डी सेल्स की। और पढ़ते 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 जीवन ही बदल गया। जो इधर जा रहा था वो बदल कर कहीं और चला गया। और वो साइलेंस इतना पावरफुल साइलेंस था कि अगले 6 मास तक हमने किसी से बात ही नहीं की। 6 मंथ्स टोटल साइलेंस। हमारी माताजी, हमारे पिताजी, उनको लगा इसको क्या हो गया, ये बात ही करना इसने बंद कर दिया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ईएनटी के पास। परंतु उसी मौन में एक क्रांति हो गई, जीवन की क्रांति, जो वो लोग नहीं समझ पाए। मार्ग बदल गया, MBBS का रिजल्ट आ गया, 12th का रिजल्ट आ गया, वो लोग इतने खुश हो रहे हैं, पर हमने देखा मनुष्य का स्वभाव। उधर ग्रुप्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, एक में 97, एक में 95, मैथमेटिक्स 97, बायोलॉजी ग्रुप 95, सब जगह एडमिशन मिल सकती है। परंतु हमने देखा कि वो लोग दुखी है क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं। तो मनुष्य जीवन का पहला पाठ हमने सीखा कि कुछ भी मिल जाए मनुष्य सुखी होता नहीं। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि उनको बेटे, उनके बेटे का फोटो न्यूज़पेपर में चाहिए था, उसमें नाम नहीं था। ये एक सूक्ष्म पाठ हमने पढ़ा कि मन अतृप्त ही रहता है, और उसी मौन में आगे के सारे दृश्य दिखे, आगे क्या करना है। जैसे जैसे आगे बढ़े, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, उसमें भी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, जैसे सरेंडर कर दिया, Thy will shall be done, होई सोई जो राम रचि राखा। वो पूरा MBBS काल एक खोज थी भगवान की, वो कौन है, वो कहाँ है, कैसे उसको ढूंढू। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई और एक तरफ अध्यात्म की, परमात्मा की खोज। कहानी बहुत बड़ी है, पर शॉर्ट में ढूंढने लगे, कहाँ ढूंढू उसको। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा, ऐसी कोई संस्था नहीं छोड़ी, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई किताब, हर जगह गए, हर जगह। इंटर्नशिप चालू हुई, वो पूरा इंटर्नशिप 1 साल। सब लोग कहते थे तुम सिंसियर हो, पर वो सिंसियरिटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा एक भाव जागृत हो गया, जे जे भेटी जे भूत देते मानी जे भगवंत, कि ये एक एक कौन है, स्वयं नारायण। क्योंकि यही किताबों में हमने पढ़ा। उस साइलेंस के बाद वाचा में आए और फिर सेकंड साइलेंस आया, सेकंड टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। एमबीबीएस एग्जाम पूरी हुई, सब बच्चे छुट्टियों में घर चले गए, हम वहीं रहे हॉस्टल में, और वहां पर सेकंड साइलेंस में एंट्री हुई अपने आप 7 दिन, और फिर इंटर्नशिप चालू हुई और फिर थर्ड साइलेंस में एंट्री हुई अपने आप। सबने कहा कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो। हम अपने भाई के पास गए, वो भी एमबीबीएस कर रहा था, और वहां पर पढ़ते पढ़ते असंख्य संस्थाओं के संपर्क में आए। ऐसी कोई संस्था नहीं जो छोड़ी, आर्ट ऑफ लिविंग, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, योगा दास सत्संग सोसाइटी, माता अमृतानंदमयी, सब 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 सब। और ढूंढते 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 एक ही लक्ष्य था, भगवान को पाना है। और आखिरकार ढूंढते ढूंढते यहां आए थे, जैसे आप अभी यहां आए, हम भी कभी ऐसे ही आए थे, परंतु सब कुछ छोड़कर आ गए थे। एक निर्णय लिया था कि ये मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, मुझे भगवान को पाना है। सत्संग में एक बार बैठे थे, ज्ञानेश्वरी पाठ चालू था और वक्ता ने कहा था जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। और तभी जैसे ये हो गया कि मुझे क्या करना है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। और इस संघर्ष में अंत में निर्णय लिया था कि इस मेडिकल को छोड़ना है और भगवान को पाने के मार्ग पर निकलना है। पर वो मार्ग भी इतना सरल नहीं था, बहुत कठिन। एक लंबी लिस्ट बनाई थी हमने 50-60 संस्थाओं की, कहां जाऊं। उसमें ब्रह्मा कुमारी इसको सबसे लास्ट में रखा था। क्यों? क्योंकि देखा था यहां केवल बहनें हैं, हम क्या करेंगे। जाना है तो ऐसी जगह, ये आना और जाना ये हम नहीं कर सकते। जाना है तो पूरा अंदर। और उसी पीरियड में अलग अलग संस्थाओं के संपर्क में आए, एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ अध्यात्म की पढ़ाई, एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ अध्यात्म की पढ़ाई। इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, भाग, मन भाग रहा था, कुछ उसको चाहिए था। और उस इच्छा में सब कुछ छोड़ने का भी निर्णय ले लिया था कि मुझे ढूंढना ही है। परंतु जब घर पर बताया तो घर वाले सब शॉक हो गए, भयंकर शौक, ऐसे कैसे हो गया। जैसे ही हमने उनसे कहा था कि हम संन्यास लेना चाहते हैं, दे वेर शॉक्ड। समझाने के लिए लगभग 200-300 लोग आए थे कि कहीं मत जाओ, तुझा आहे तुझ पाशी, कहां जाना है, इधर ही कर जो करना है। बहुत कुछ, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर जी को भी लेटर लिखा गया था, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2003। परंतु वो प्यास ऐसी गहरी थी, इतनी गहरी कि वो लोग नहीं समझ पाए, कोई भी नहीं समझ पाए। और वही प्यास एक दिन उसी समय भटकते 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 यहां ले आई, जहां आप लोग आए हैं। ये शांतिवन देखा है सबने, उसमें एक हॉल है, डायमंड हॉल, वहां। और अचानक जो 20,000 लोगों की सभा थी, उस बीच एक नया जन्म हुआ। अपने आप। इसलिए कहा कि आप लोग यहां आए हो, यह नियति का कोई संकेत है। यहां हर एक नहीं पहुंच सकता, यह स्थान साधारण स्थान नहीं है। हम कहीं और जा रहे थे और यहां आए, और सोचा था फिर यहां से वहां जाना है, और इस तैयारी से भी आए थे कि यहां सावधान रहना है, हिप्नोटाइज ना कर दे कोई। पर वो अनुभव इतना गहरा था कि रुकना पड़ा, अपने आप। तो यहां आना भाग्य है, यहां आना कोई किसी जन्म का पुण्य है जिसने ढकेल ढकेल कर यहां लाया। तो जीवन की इस दौड़ में रुकना है। यहां आने का उद्देश्य क्या है? रुकना और स्वयं को देखना, मुझे आगे क्या करना है। यहां आए, यहां रुके और यहां से चले गए, और वहां जाकर कहा बहुत अच्छा था, भाषण अच्छे थे, इनकी व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ के पर्दे बहुत अच्छे थे, सब अच्छे थे, लोग भी बहुत अच्छे थे, भोजन तो बात मत पूछो। परंतु यहां कुछ और भी है, कुछ सूक्ष्म है, कुछ तरंगे है, कुछ ऊर्जा है। कितनों को भी यहां आकर ऐसा लगा किसी को कि यहां हम पहले भी आए हैं? किसी को लगा? एनीवन? कुछ लोग हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेजा वू। इसको कहते हैं डेजा वू। हम पहली बार आए थे यहां पर तो ऐसा लगा था कि ये तो स्थान मुझे पता है, पता ही नहीं यहां के स्थान कहां कौन सा रास्ता जाता है ये भी मुझे पता है। ऊपर चढ़ रहे थे आबू रोड से माउंट, यहां से ऊपर वो पहाड़, वो वादियों को देखकर लगा इनको मैं बचपन से देख रहा हूं, ध्यान की अवस्था में इनको देखा है, कभी स्वप्न में देखा है पहाड़ियों को, और ये हमारा ही नहीं कितनी आत्माओं का अनुभव है। इसलिए यहां से जाने से पहले एकांत में बैठो थोड़ी देर और अनुभव करो कि यहां कुछ है, कौन मुझे यहां खींच कर लाया। और संसार की जो भाग दौड़ है वो मुझे कहां ले जा रही है? आई नीड टू स्टॉप। मुझे रुकना है, खुद को देखना है और फिर आगे बढ़ना है। एचजी वेल्स ने एक कहानी लिखी है, एक व्यक्ति होता है जिसे बहुत वो यात्रा के बारे में पढ़ता है, समुद्री यात्रा के बारे में इतना पढ़ता है कि उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे भी समुद्र यात्रा करना है और दूर कहीं जाना है, वास्को डा गामा की तरह, कोलंबस की तरह, और कोई नए देश को ढूंढना है। और वो सारी तैयारी करता है, एक अपनी डोंगी, एक नाव तैयार करता है, उसमें सारा सामान ले लेता है, खाने पीने की वस्तु, टैबलेट, सब कुछ, और निकलता है समुद्र की यात्रा में। 3 मास तक समुद्री यात्रा करते रहता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, निराशा भी होती है बीच में, परंतु फिर से आशा बनती है कि कुछ तो दिखेगा, कुछ तो नया दिखेगा, कोई नई जगह मिलेगी, कोई नई जगह मैं खोजूंगा, नए लोग मिलेंगे, नई भाषा होगी, सब कुछ नया होगा, बहुत आशा से। और अचानक एक दिन 3 मास अकेला उस नाव में, और अचानक एक दिन जमीन दिखाई देने लगती है। इतनी खुशी होती है कि जमीन दिख गई, अब नए लोग मिलेंगे, सब कुछ नया होगा। और फिर नाव को लगाता है और उतरता है, परंतु देखता है थोड़ा परिचित सा दिखाई दे रहा है। थोड़ा और अंदर जाता है तो गांव भी परिचित से दिखाई दे रहे, और उनकी भाषा तो उसी की भाषा है। उसे लगा कोई नई भाषा वाले लोग मिलेंगे, और थोड़ा अंदर जाता है, पता चला है वो वहीं पहुंच गया जहां से निकला था, उसी देश में वो पहुंच जाता है जिस देश से वो आया था। उसकी ये सारी यात्रा उसको फिर वहीं ले आई, कहीं पहुंचा ही नहीं। कहीं हम भी तो ऐसी यात्रा नहीं कर रहे? इसलिए साइलेंस, एकांत, स्टॉप और सोचना है, मैं किस तरफ यात्रा करना, मुझे कहाँ जाना है, कहीं जीवन का लक्ष्य भटक तो नहीं गया है। एक फिलोसोफर ट्रेन में यात्रा कर रहा है और बहुत प्रसिद्ध है। वो टीटी आता है और पूछता है टिकट। वो टिकट ढूंढने लगता है, कहीं पर भी टिकट नहीं मिलती। वो टीटी कहता है, कोई चिंता की बात नहीं, आप इतने प्रसिद्ध हो, आपको कौन नहीं जानते, नहीं दिया तो भी चलेगा। वो कहता है, प्रॉब्लम वो है ही नहीं, उस टिकट पर लिखा हुआ है मुझे जाना कहाँ है, इसलिए ढूंढना जरूरी है। इसलिए ढूंढना है, मैं कौन, कहां से आया, क्या करना है, कहां जाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य शायद वो है ही नहीं या था ही नहीं जिसको हमने समझा है और जिसके लिए जीवन अर्पित कर दिया है। जीवन का लक्ष्य है उस परम की ओर जाना, उस परम को पाना, और उसे पाने की कम से कम 8 अवस्थाएं हैं, 8 स्टेजेस थ्रू आत्मा को गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आत्मा उस परम से मुलाकात करती है और एक संतुष्टता का अनुभव होता है जीवन में। नहीं तो निरंतर बेचैनी, निरंतर बेचैनी। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, अवर सिंसरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, अवर डीपेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, वर्तमान को नहीं देखते, जो आगे जो है नहीं उसे पाना चाहते, यही दुख का कारण है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और यही दुख दुख दुख। सबसे पहली अवस्था है विरह की अग्नि, भीतर एक बेचैनी उत्पन्न हो, अतृप्ति का भाव कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मुझे भर नहीं सकता। तब तक अगली यात्रा चालू नहीं होती है। जो ये सोचते हैं कि मैंने सब पा लिया और सब कुछ अच्छा चल रहा है, अर्थात कुछ तो गड़बड़ है। अगर इसी को सब कुछ समझ रखा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक है तो अंदर बेचैनी क्यों है, फिर नींद क्यों नहीं आती, फिर भय क्यों है, घबराहट क्यों होती है, पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, डर क्यों है कि कहीं खो ना जाए। एक वैक्यूम है भीतर, एक स्पिरिचुअल वॉइड, और वो होना भी चाहिए। वो जब तक नहीं है तब तक, नहीं तो हम फंसे रहेंगे एक भीतर। और ये बेचैनी धीरे धीरे किस बेचैनी में कन्वर्ट हो जाए, उस परम को पाने की बेचैनी में, कि जीवन में कुछ है जो मुझे मिला नहीं है, अब उसकी प्यास उत्पन्न हो हाईएस्ट के लिए। यात्स देही यात्स जन्मी नाउ हियर, पैंग्स ऑफ सेपरेशन इसको कहते हैं, विरह की अग्नि। दूसरा है बेचैनी, रेस्टलेसनेस। पहला विरह, आग, एक किसकी आग, मैं अपने परम अपने प्रेमी से अलग हूं, इसकी आग, वो अंदर जगे। नहीं तो हम देखते हैं संसार में सब लोग अपने अपनी दुनिया में हैं, सब अपने अपने दुख दर्द में डूबे हुए। किसी से भी पूछो कैसे हो, कोई भी सही उत्तर नहीं देता, सब झूठ बोलते। आई एम फाइन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आई एम फाइन, फाइन कोई है ही नहीं। भीतर डर है, आशंका है, और सबसे बड़ा डर कौन सा है इस संसार का, एनीवन? मृत्यु का, मृत्यु से भी बड़ा भय कौन सा भय, एनीवन? हाँ, किसका, लोग क्या कहेंगे, उससे भी बड़ा मेरा क्या होगा, मेरे जो अपने उनका क्या होगा, और भी कोई भय है, बीमारी का भय, और भी कोई भय? भय भय, फियर की बात चल रही है, खोने का भय, जिसको मैंने अपना बनाया वो कहीं खो ना जाए। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति था, इतने अरबपति था, परंतु मरते हुए दुख में मरा कि मैंने जितना कमाया है इतनी पीढ़ियों तक तो चलेगा, उसके आगे की पीढ़ी का क्या, सातवीं पीढ़ी का क्या? द रिचेस्ट मैन इन अमेरिका एंड्रयू कार्नेगी, पर दुख में मरा। सबसे बड़ा भय है द फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय, अज्ञात, पता नहीं, पता नहीं कब है। तो एक नई यात्रा शुरू करनी है, और वो यात्रा है कि जब तक आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिलती, उसकी प्यास पूरी नहीं होती। आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही मिटा सकता है। इस संसार की कोई भी चीज मिल जाए, कुछ भी, कितना भी बड़ा पद, कितने भी पैसे, कितना भी कुछ भी, फिर भी आत्मा प्यासी की प्यासी ही रहेगी, क्योंकि एक परमात्मा के अतिरिक्त ये प्यास कोई भी नहीं मिटा सकता। चाहे कुछ भी कर लो, मिनिस्टर बन जाओ, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, प्यास आत्मा को उसकी है। तो सबसे पहला है विरह अग्नि उत्पन्न हो, और ये उत्पन्न होगी तो समझ लेना एक भाग्य है। सब में नहीं होती है, संसारिक चेतना है तो कंडीशन्ड सोल संसार के प्रभाव में रहती है, उनके अंदर ये इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है कि हमें शांति चाहिए, कहीं जाना चाहिए, कुछ मौन में जाना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, वो बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। स्टैंड और स्टेयर, रुक कर देखने का टाइम ही नहीं है किसी के पास, केवल भागने का टाइम है बस। और एक दिन फिर मृत्यु आती है और गए। हमको याद है हमारे हॉस्पिटल में, हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आता था जिसके पास 5 से 6 मोबाइल थे, रहते थे हमेशा, एक इधर, एक इधर, एक पीछे की जेब में, एक इधर ही की जेब में, और 2 हाथ में 2। हर बार उनका कॉल आता था, बैंक में मैनेजर थे, हर बार कॉल आता था नए नंबर से आता था, नंबर भी बहुत सारे थे, बीती रहते थे। और एक दिन हम अचानक कैजुअलिटी के पास से जा रहे थे आईसीयू में, देखा एक पेशेंट है, डेड बॉडी, ब्रॉड डेड, स्ट्रेचर पर, देखा यही व्यक्ति घर में, इतना बड़ा हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते खलास, गॉन, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हम सोच रहे थे उसको देखकर, मोबाइल, वो कहते थे बहुत जरूरी है, सबसे कांटेक्ट रखना पड़ता है, गॉन। अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, सीरियस थे, बैठे थे पर बहुत सांस फूल रहे थे, उसके रिश्तेदार थे, टूरिस्ट लोग थे, माउंट आबू में आते रहते, हमारे ज्यादा पेशेंट यही होते हैं, 40 लोग जाते हैं घूमने, और एक को हार्ट अटैक आता है, बाकी फिर पूछते अब हम क्या करें, हम तो घूमने आए थे, हम कहते आप लोग जाओ और इसके रिश्तेदार को भेज दो फिर। तो वैसे ग्रुप आया, वो बहुत सांस फूल, हमने कहा ये सीरियस है, इसको तुरंत एडमिट करना है, नहीं 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 वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी, फिर भी कहा नहीं इसको भेजना ही। बस आईसीयू तक पहुंचते ही वहीं पर कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट, गॉन, जीवन इतना अनित्य है। इस अनित्यता का को देख लेना, ये तभी हो सकता है कई जन्मों के अगर पुण्य है और वो उदय हो गए तो ही। इसलिए कहा आप जो यहां आए हैं, किसने लाया आपने यहां को, दीदियों ने, किसने लाया, किसने लाया, बाबा ने, किसने लाया? हर आत्मा के पुण्य ने ढकेल ढकेल कर यहां पर पहुंचाया है, उसके सिवा यहां नहीं आ सकता है, कितने लोग टिकट करते, रिजर्वेशन करते, लास्ट मोमेंट में कैंसिल होता है ना। या आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो हर बार आना चाहते थे पर कैंसिल, इस बार फंस गए। तो पहला विरह, दूसरा बेचैनी, तीसरा एक धुन, धुन धुन धुन, एक ऑब्सेशन। जैसे वो स्पोर्ट्समैन को ऑब्सेशन होता है, जैसे मैराथन रनर को बस वही दिखता है कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं, मैं फर्स्ट आ रहा हूं। जैसे ओलंपिक में जाने वाले को केवल दिखता है कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं। म्यूजिशियन को दिखता है कि मैं म्यूजिक बजा रहा हूं और सारी दुनिया मुझे देख रही है। सिंगर को दिखता है कि मैं गीत गा रहा हूं और सब मुझे सुन रहे हैं। उसी तरह आत्मा में एक प्यास उत्पन्न हो जाए भगवान को पाने की, एक धुन। नको देवराया अंत आता पाहु, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाए। ऐसी प्यास कि अगर तू ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि तृप्ति संसार में है नहीं कहीं पर भी, बहुत बेचैनी है। जब साइकिल थी तो दुखी इसलिए थे कि बाजू वाले के पास स्कूटर है, फिर हमने स्कूटर खरीदी, पर अब दुख इसका है कि बाजू वाले के पास कार आ गई है। दूसरों के दुखों से हम ज्यादा दुखी है, दूसरों के सुखों से। हमने कार ले ली पर दुख अब भी है क्योंकि उसके पास एसी वाली कार है, हमारी कार। फिर हमने एसी वाली कार ले ली, उसने तब तक हेलीकॉप्टर ले लिया, अब अपनी कार बैलगाड़ी जैसी दिखती है। इज अ कंपैरिजन, देयर इज तुलना। इसलिए बेचैनी वो के वही। साइकोलॉजी में एक शब्द है हिडोनिक ट्रेडमिल, हिडोनिक ट्रेडमिल नाम का सिद्धांत है। अर्थात एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए गरीब है। फिर उसको लॉटरी लग गई, बहुत पैसे आ गए और एकदम खुश हो गया, पर कुछ समय के बाद ग्राफ वहीं आ जाता है खुशी का जो पहले था। पहला दुख अभी पैसे के साथ दुख है, पहले पैसे के बिना दुख था, अभी दुख विद पैसा, पर बाकी अवस्था सेम है। इसको कहते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल। तीसरा धुन, अगर ये हो जाए तो समझना भाग्य उदय हो रहा है। तीसरा धन्यवाद का भाव उस परम के प्रति। हम सबको धन्यवाद करते, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू करते हैं। क्या भगवान को थैंक यू करते हैं? उसने ये शरीर दिया, उसने इतना सब कुछ दिया। हमारे ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बहुत कम है, कंप्लेंट्स की लिस्ट ज्यादा है। मैक्सिको में दो झरने थे, मैक्सिको में दो झरने, एक झरने में गर्म पानी आता था, एक झंडे में ठंडा पानी। और गांव की जो स्त्रियां थी उनको कितना अच्छा होता था, गर्म पानी से कपड़े धो और फिर ठंडे पानी से, दोनों एक साथ। तो एक इंटरव्यू लेने एक पत्रकार वहां पहुंचा और गांव की स्त्रियों का इंटरव्यू लिया, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये प्रकृति की कैसा कैसा अद्भुत चमत्कार है कि एक झरने में गर्म पानी, एक में ठंडा। वो गांव की स्त्रियों ने कहा, वो तो सब ठीक है, साबुन कहां से आती है, साबुन तो है ही नहीं, साबुन भी तो आनी चाहिए। अतृप्ति तो है ही, कुछ भी मिल जाए उसमें भी दुखी है वो। ग्रेटिट्यूड, क्या करना है उस परम को, उस परमात्मा को धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद? इस नई सुबह के लिए धन्यवाद, यहां लाने के लिए धन्यवाद, इस सभा के लिए धन्यवाद। आप जो यहां आए, आपका जिन्होंने आवभगत किया, स्वागत किया, आपकी जिन्होंने देखभाल की इस जगह पर, उन सबका धन्यवाद। जिन्होंने भोजन बनाया उनका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे उनका धन्यवाद, इन बहनों का धन्यवाद। करेंगे कि नहीं धन्यवाद? कि नहीं करेंगे ना? कितने सारे आसपास देखो, सब यंग यंग लोग घूमते हुए दिखते हैं। इन बहनों को देखो, श्वेत वस्त्र धारण करके घूम रही है। अगर ये चाहती तो संसार में बहुत कुछ कर सकते थे। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था, अ डे विल कम, एक समय आएगा। कब कहा था? उन्होंने शरीर छोड़ा 1902, इस संस्था की शुरुआत हुई 1936। कहा था अ डे विल कम, एक दिन आएगा। कौन सा दिन?
जब
इंडियन लेडी, भारतीय नारी, क्लैड इन व्हाइट, श्वेत वस्त्र धारण करेगी, शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर, और परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। ये एक भविष्यवाणी थी। किसके लिए थी? इन्हीं ब्रह्मा कुमारियों के लिए, कि भारतीय नारी, क्लैड इन व्हाइट, शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ वर्ल्ड गॉड द वर्ल्ड ओवर। तो इनको साधारण नहीं समझना है, जिन्होंने अपना जीवन, अपना यौवन अपना सर्वस्व इस यज्ञ की वेदी पर स्वाहा किए। धन्यवाद। तो धन्यवाद सुबह उठकर, हर दिन के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद, कल जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, हर एक व्यक्ति को धन्यवाद, जिसने हमारी निंदा की उसका भी धन्यवाद, जिसने ग्लानी की उसके भी धन्यवाद, जिसने क्रिटिसाइज किया उसके, क्योंकि उसने जीवन में सिखाया हमको। सबसे ज्यादा हम किससे सीखते हैं? जो हमारी स्तुति करते हैं उससे, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है, तुम हंसते बहुत अच्छे हो, तुम बोलते बहुत अच्छे हो, ऐसे बोलने वालों से हम कुछ सीखते हैं क्या? पर जो आके कहे तुम पाखंडी दिखाई देते हो, चेहरे से ही झूठ है चेहरे पर, तो अलर्टनेस बढ़ती। अच्छा, इनके तो रगों में ही बेईमानी है, ऐसा अगर कोई कह दे तो जागृति आती है। तो निंदक हमें जगाए रखते हैं, क्रिटिक्स। इसलिए दिन की शुरुआत किससे हो? धन्यवाद से, ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से, थैंकफुलनेस से, हर दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए। नई सुबह, आज कुछ तो नया होगा, कुछ हम सीखेंगे नया। अगला प्रभु प्रेम, नेक्स्ट पॉइंट प्रभु प्रेम। हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाना। मनुष्यों से तो बहुत प्यार किया, क्या प्राप्ति हुई? धोखा। क्या दिया लोगों ने? धोखा ही दिया ना, कहीं ना कहीं। कितना भी प्यार करो किसी के लिए, फिर भी अतृप्ति रहती है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में धोखा तो मिलता ही है। पर एक ईश्वरीय प्रेम ही ऐसा है कि जिसमें कोई धोखा नहीं है, परमात्मा प्रेम। अगला विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, कि हमने अपने जीवन को अब ईश्वर के अर्पित किया है, अब वो देखेगा। जिनके जीवन में फेथ रहा है, इतिहास को स्टडी करो, वो बड़े सुरक्षित रहे, और जिनके जीवन में फेथ नहीं है वो दुखी रहे जीवन में। एक फेथ बहुत पावरफुल चीज है, बहुत शक्तिशाली चीज, जो व्यक्ति को थामे रखती है। बाइबल में उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट जा रहा है, उसके शिष्य है, नाव में है, गलीली की झील में है, और अचानक तूफान आ जाता है। वो तूफान नाव झरने, झील का पानी नाव के अंदर, सारे शिष्य डरते हैं, और वो जीसस क्राइस्ट वहां सोया पड़ा है। वो कहते हैं, मालिक, मास्टर, प्लीज वेक अप, सेव अस। जीसस क्राइस्ट खड़ा होता है, हाथ करता है, पीस बी स्टिल, तूफान शांत हो जाता है, और फिर वो एक लाइन कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, क्या तुमको इतना भी विश्वास नहीं है? जिस नाव में मैं हूं वो डूबेगा, ये कैसा विश्वास है तुम्हारा? भगवान ने थामा है तुम्हारे हाथ को, मेरे जीवन को भगवान ने थामा है, वो चला रहा है मुझे। जिनके जीवन में ये भाव रहा है दे रिमेन स्टेबल, और जिनको मैं रहा है वो हिलते रहे, ये देखा गया। इसलिए एक भाव, एक श्रद्धा, एक विश्वास, ये संसार विश्वास से चलता है। इफ यू हैव फेथ एंड इफ यू आस्क द माउंटेन गेट अप एंड गेट प्लांटेड ऑन द सी एंड इट शैल बी डन, अगर तुम्हारे पास विश्वास है और तुम पर्वत से कहो हे पर्वत उठ और जाकर समुद्र में गिर, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। एक प्रवचन में एक माता ये लाइन सुनती है, एक प्रवचन हो रहा होता है उसमें एक माता बाइबल की ये लाइन सुनती है कि विश्वास में इतना फर्क, निश्चय इतना पावर है। वो अपने घर पे जाती है, खिड़की खोलती है, खिड़की के बाजू में एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ से कहती है हे पहाड़ उठ और जाकर समुद्र में गिर, फिर खिड़की बंद करके रात में सो जाती है। सुबह दरवाजा खिड़की खोल के देखती है गया कि नहीं गया, खिड़की खोलती है पहाड़ उधर ही है, वो कहते हैं मुझे पहले ही पता था। तो ये कैसा विश्वास है, ये कैसा निश्चय है। निश्चय अर्थात निश्चय, पूर्ण निश्चय, एक अदृश्य शक्ति है उस पर मुझे निश्चय है और वो मेरी पालना कर रहा है। मैं उसकी छत्र छाया में चल रहा। मोहम्मद पैगंबर जब चलते थे रेगिस्तान से, उनको अनुभव होता था उस तपती रेगिस्तान में एक बादल हमेशा ऊपर है जो उनको छाया दे रहा है, पर वो बादल केवल उनको ही दिखता था और किसी को नहीं दिखता था। महावीर जब रास्तों से चलते थे जो कांटे ऐसे थे वो ऐसे हो जाते थे ताकि उनको ना चुभे। तो जब भगवान पर विश्वास होता है तो अपने आप कार्य होने लगते हैं। इतनी पावर और इतनी शक्ति है उस विश्वास में। यहां पर भी आप देखो इतना बड़ा कार्य कैसे चल रहा है, कौन कर रहा है ये, एक साथ छः छः प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अगर देखो कौन करता है, कौन मैनेज करता है, अपने आप। कोई डिवाइन पावर है जो ह्यूमन फोर्स नहीं है, ये इज इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकता। कोई एक सूक्ष्म शक्ति है जो ये सब कर रही है। तो विश्वास, उसके बाद में समर्पण, उसके प्रति क्या करना है, सरेंडर कर देना कि अब तुम, द्रौपदी ने इसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया और लास्ट में सरेंडर किया, गोपाल हे गोविंद ये मनुष्य मदद नहीं करेंगे, मैं तुझ पे अपना जीवन अर्पित करती हूं। एंड देन द हेल्प केम, और लास्ट है प्यूरिटी। भगवान को कौन से बच्चे पसंद है, छलकपट वाले, छलकपट छलकपट करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसे लोग पसंद है क्या उसको? कैसे लोग पसंद है? उसका एक नाम क्या है भक्ति में, भोलानाथ। भोलानाथ को कौन से लोग पसंद है, जो भोले। आप अभी जहां है, यहां पर एक बार एक पुलिस कमिश्नर आए थे और ऐसा ही प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम चला उन लोगों का, कुछ होगा प्रोग्राम, शिविर नहीं कुछ और था। और फिर यहां से उनको शांतिवन जाना था और यहां से जो बस जा रही थी वो बस चली गई। तो एक भाई है हमारे, बड़े भोले हैं, तो वो साइकिल लेके खड़े थे। अब उसको क्या पता ये पुलिस कमिश्नर है। तो उन्होंने उनको अपने साइकिल के दंडे में बिठा दिया, तो बोले आप यहां बैठो, और उनकी बैग पीछे लगा दी और बहुत भोलेपन से उनकी उनको वहां पहुंचा दिया, उधर शांतिवन में जहां से उधर जाना है। तो वो कमिश्नर जी हमेशा, उनको तो आदत है, उनके आसपास लोग रहते हैं, बड़ी गाड़ी होती है, यहाँ ये भाई इतना भोला, उसको तो पता ही नहीं है कौन है, इधर बिठा दिया, पीछे लगा दिया और साइकिल से उनको वहां पहुंचा दिया। वो कमिश्नर साहब कॉन्फ्रेंस भूल गए, जो लेक्चर चले थे वो भूल गए, उसको वो याद रहा उनको, क्योंकि लोगों को ज्ञान थोड़ी ना याद रहता है, किसने हृदय को टच कर लिया वो याद रहता है, ये भूल जाता है। एक दूसरे आए थे यात्रा भोजन लेना ही भूल गए और वैसे ही चले गए स्टेशन तक। एक भाई अपनी साइकिल पे पकड़ तेजी से गया और यात्रा भोजन उनको बस में दिया, बस में थे वो लोग और बस में उसको पहुंचाया बस रोक कर। वो सारी कॉन्फ्रेंस भूल गए, सारा शिविर भूल गए, सारे लेक्चर भूल गए, वो भाई याद रहा बस। तो मनुष्य हृदय प्रेम से चलता है, प्रेम। इसलिए खजाने बहुत है सूक्ष्म में। सबसे बड़ा खजाना जो गिना जाता है वो है गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना है, पवित्रता का खजाना है, संकल्प खुशी बहुत है। बट जो लोग गुणवान होते हैं वो क्या करते हैं, इधर टच करते हैं। जो बहुत ज्ञानी है, पंडित है, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो इतना प्रभावित नहीं करते। परंतु जो भोले हैं, अनुभव, एक लास्ट अनुभव बताएंगे। हम लोग ऊपर क्लास करते हैं तो एक माता आती थी, उसमें एकदम भोली वाली महाराष्ट्र की माता, ना उसको लिखना आता है ना पढ़ना आता है, पर वो सुबह अमृत वेला 2 बजे उठ के वहां कुटिया में योग करती है। उसको कई बार देखा ऐसे बैठे रहती मेडिटेशन में। अब उसने ना पढ़ाई की है ना कुछ की। उसको हम लोगों ने पूछा था, तुम क्या करती हो उधर सुबह सुबह? उसने कहा, मुझे कुछ आता नहीं है, मेडिटेशन वगैरह योग भी मुझे कुछ नहीं समझ आती। मैं क्या करती हूँ, ऐसी आत्मा को निकालती हूँ और ऐसी बाबा के सामने रखती हूँ और उसको बोलती हूँ जो तुमको करना है कर। दिस इज राजयोगा मेडिटेशन, हाइएस्ट ग्रेटेस्ट टेक्निक। इससे बड़ा और क्या है? संपूर्ण समर्पित कर दिया उसके सामने, तुमको जो करना है तुम करो। यही तो योग है, यही तो जीवन है। राजयोग अर्थात कोई ऐसे बैठो वैसे बैठे, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये सब दूसरा है। मेन जो टच करता है हृदय को वो क्या है? प्रेम। ज्ञान नहीं टच करता है, क्या टच करता है? प्रेम। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। हॉस्पिटल में लोग आते हैं, हम उनको ज्ञान नहीं सुनाते हैं किसी को भी, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करते हैं, सॉल्व करते हैं। यही तो योग है, कर्मयोग। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। और यही जीवन का लक्ष्य है, जोजे वांछिल तो थे लाहो, जिसको जो चाहिए उसको वो देना, उसकी वो इच्छा पूरा करना। तो सभी स्थिर बैठेंगे और ये 8 बातें आपको बताइए। पहली थी विरह, दूसरी थी बेचैनी, पर संसार वाली बेचैनी नहीं, भगवान नहीं मिल रहा है इसकी बेचैनी, डिवाइन डिस्कंटेंट, ये बेचैनी लाना है। धुन, एक धुन लग जाए कि मुझे कुछ पाना है जो मिला नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद का भाव। विश्वास, एक विश्वास। प्रभु प्रेम, समर्पण, पवित्रता। भगवान को कौन से हृदय पसंद है? प्योर, जो बहुत प्योर है वो उसे पसंद है। इंटेलेक्चुअल्स उसे इतने पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट करने वाले प्रिय नहीं है। हे हनुमान, श्री राम कहते हनुमान जी को, विभीषण आया है, सब कहते इसको लेना मत, ये रावण का भाई है, छल कपट कर रहा है, ये रावण की चाल हो सकती है। पर राम जी कहते ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो हृदय से निर्मल है वो मुझे प्राप्त करता है। मोहि छल कपट छिद्र ना भावा, दूसरों के दोष देखने वाले मुझे प्रिय नहीं है। जो मेरे शरण में आता है, पूर्ण हृदय से आता है, नमे भक्त्या प्रयश्यति, हे अर्जुन मेरे भक्त का विनाश हो नहीं सकता। जो शुद्ध हृदय से मेरे पास आए, जितना भी पापी हो मैं उसे स्वीकार करूंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे और लास्ट में बाबा को धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद का भाव मन में जगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।